हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व पदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 11। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हरिर्गुणा क्षिप्तमते भगवान बादरायणी, अध्यगान महदाख्यानम नित्यं विष्णुजन प्रियः हरिर्गुणाक्षिप्तमति भगवान् बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः हरिर्गुणाक्षिप्तमते 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 भगवान् बादरायणः हरिर्गुणाक्षिप्तमते भगवान् बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः शब्दों का अर्थ हरिर्गुण हरि अर्थात हरि गुण दिव्य गुणों में आक्षिप्त लीन होकर मति मन भगवान शक्तिमान बादरायण ही व्यासदेव के पुत्र ने अध्यगात अध्ययन किया महत महान आख्यानम इस कथा का नित्यम नित्य नियमित रूप से विष्णुजन अर्थात भगवत भक्त प्रियः प्रिय अनुवाद श्री व्यास देव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा थे। श्री वेद व्यास जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में आसक्त रहता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक भागवत के श्लोकों का पाठ करके और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष निराकार ब्रह्म के स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि परब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से वे अद्वैतवादी दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन व्यास देव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्रील व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन किया और व्यास देव के अनुग्रह से श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके शिष्य को ग्रहण कर सके सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यवहारिक रूप में सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह विचार करते हुए कि उन्होंने ब्रह्म की निराकार रूप की भक्ति में इतना समय व्यर्थ ही गंवा दिया, ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपेक्षा सगुण रूप में अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णुजनों अर्थात भागवत भक्तों की ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णुजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भागवत भक्त जीवन की सत्ता को नष्ट नहीं करना चाहते और भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को बहुत अधिक नहीं चाहते। इसी प्रकार ब्रह्म से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतियोगी बनते रहते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी चरम साकार तथा निराकार अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतएव वे सदैव विष्णुजनों की संगति करना चाहते थे और विष्णुजन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे साक्षात भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे परमेश्वर के साकार रूप में आसक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न की का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकर्षित हुए। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं फंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। वास्तव में यह वास्तविक उत्तर है शौनक जी के प्रश्न का। अगर हम शौनक जी के प्रश्न को जो श्लोक नंबर 9 में उन्होंने पूछा है उसको यदि हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छुपा हुआ। प्रश्न के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, सवय निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य व्याबृहति मेतां आत्मा रामः समभ्यसत। कि वो आत्मा राम थे, पहला तो ये प्रश्न है। फिर वो पहले जब वो आत्मा राम थे तो भक्ति में क्यों आए, यानी कि भक्ति फिर उन्होंने क्यों करना, साकार भगवान की भक्ति करना क्यों शुरू की। तो इसका उत्तर तो यहाँ पर श्लोक नंबर 10 में तो उन्होंने बता दिया कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणोहरि। कि भगवान के इतने विलक्षण गुण हैं, इतने रसमय वस्तु हैं कृष्ण, कि चाहे वो आत्मा राम हो, मुनि हो, निर्ग्रंथी हो, जो भी हो, तो भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित हो ही जाता है। अब भक्ति का अगर साधारण शब्दों में उत्तर हम डेफिनेशन क्या है भक्ति की, कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए भोग अर्पण करना और भगवान के ना कीर्तन करना, और ये कि भगवान को ये आरती करना और ये न कि भगवान की कोई सेवा करना। भक्ति का अगर सरल शब्दों में मतलब लिया जाए तो ये है कि भगवान से, क्योंकि भक्त वो त्याग करता है तो क्या करता है, कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणोहरि, के भगवान के गुण इतने विलक्षण हैं कि जीव यदि भगवान के विषय में सुनता है या फिर सोचता है तो हृदय से वो उस आनंद को महसूस करना चाहता है, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म के टेस्ट में, उसे वो निराकार ब्रह्म की ध्यान करते हुए वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए वो भक्ति की ओर मुड़ता है। चलो ठीक है, वो भक्ति तो करना शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर तो उनका यह प्रश्न है, कस्य वा ब्रहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। इसका मतलब होता है, समभ्यसत का मतलब होता है चलो ठीक है, वो भक्ति कर रहे हैं, वो बात तो समझ में आ गया कि भगवान के इतने सारे गुण हैं, तो भक्ति, अब देखो कितने सारे लोग भगवान की भक्ति करते, क्यों, क्योंकि ये न कहना प्रकार भगवान से आकर्षित हैं। भगवान से संपर्क होने पर वस्तु मतलब वास्तव में जीव आनंदित होता है, ग्लोरियस होता है, सुखी होता है, तो फिर इसलिए जीव जो है वो क्या करता है, अहेतुकी भक्ति, भगवान की अहेतुकी भक्ति को स्वीकार करता है। सुखदेव गोस्वामी जब वन में घूम रहे थे संसार की उपेक्षा करके, यहाँ तक कि अपने पिता के स्नेहमय शब्दों की भी उपेक्षा की, वो पिता उन्हें बुला रहे थे, हाँ पुत्र नहीं जाओ मुझे छोड़कर, परंतु सब कुछ की अपेक्षा की, न खाना न पीना कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसे व्यक्ति के मन को भी भगवान के गुणों ने ऐसे खींचा, ऐसे जबरदस्ती कि वो एकदम परवश होकर आ गए। आक्षिप्त मति यानी जबरदस्ती आक्षिप्त, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं हरेर गुणा आक्षिप्त मति, यानी कि किसी को जबरदस्ती बाय फोर्स अगर कोई चीज खींच के घसीट कर लेकर आती है तो उसको बोलते हैं आक्षिप्त, कि भगवान के गुण ऐसे हैं, हरे गुणाक्षिप्त मतिल भगवान बादरायण ही। कल जो हमने शब्द पढ़ा था ना वो था बादरायण, श्लोक नंबर 1 में पढ़ा था, निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण। बादरायण किसको बोलते हैं, जो बद्री का आश्रम में रहते हैं, शमिया प्राचीन का आश्रम है, बेरों के उस जंगल में जिनका निवास है अर्थात वेदव्यासी, और आज जो शब्द पढ़ रहे हैं ना वो है बादरायण ही, यानी उस बादरायण अर्थात व्यास देव के सुपुत्र, उनके पुत्र की बात हो रही है, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी की बात हो रही है, कि भगवान के गुण इतने हरेर गुणा, हरेर का मतलब होता है सर्व आकर्षण, जो हरि हैं, जो हृदय को हर लेते हैं, हृदय को खींच लेते हैं, उनके गुणों के द्वारा मति जो है क्षिप्त हो जाती है, मति खींच ली जाती है, और आत्माराम बने हुए हैं वो पहले सुखदेव गोस्वामी, और अब आकर के गोपी जनों की बातें कह करके रोने लगे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी कथा करते हैं 10वें स्कंद में, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, जब ब्रह्म मोहन लीला होती है ना, जब ब्रह्मा जी गाय और बछड़ों को छुड़ा कर लेकर जाते हैं, तो उस समय एक क्षण जो है मतलब वो पूरा साल गुजर जाता है, और उसके बाद जब वो बच्चे घर पे पहुंचते, क्योंकि बच्चे तो ब्रह्मा जी लेकर गए थे, तो वहां पर इस संसार में तो एक साल बीत गया, लेकिन वहां क्योंकि ब्रह्मा जी के पास तो एक क्षण में वो दिन साल खत्म हो गया था। फिर वापस जब बच्चे गए सारे ग्वाल बाल माता के पास अपने गए, तो बता रहे कि उसने कृष्ण ने ऐसे अजगर को मारा। अब अजगर को मारा था एक साल पहले, लेकिन क्योंकि वो अभी आए हैं तो वो बता रहे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज एक संदेह करते हैं और पूछते हैं कि एक साल के पहले की घटना आज की घटना कैसे हो सकती है। तो इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी को समाधि लग गई, वो सीधा लीला में पहुंच गए, बोलना बंद हो गया। परीक्षित महाराज व्याकुल हो गए कि अब कथा कैसे करेंगे, ये तो समाधि में चले गए हैं। और फिर जोर जोर से संकीर्तन हुआ, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण हुआ और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को पुनः जागृति उत्पन्न हुई। मतलब और वे जब भी दसवें स्कंद में स्पेशली जब वो भक्तों के प्रेममय उद्गार को वर्णन करते थे तो सुखदेव गोस्वामी निरंतर अश्रुओं से सने रहते थे, आंखों से आंसू रुकते नहीं थे और सदैव गोपियों की बात करते थे या कृष्ण की राधा के प्रेम की बात करते थे या कुछ भी, यशोदा मैया कृष्ण के साथ कैसे स्नेह करती थी, गोपियां कैसे स्नेह करती थी, एक एक चीज को वर्णन करते हुए वे रुद्ध जाते थे, गला रुद्ध हो जाता था, नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगती थी। कहां गया आत्मा रामत्व, सब भूल गए श्री गोपी जनों ने तो इन भगवान के आकर्षणमय गुणों को बहुत बहुत विपरीत भाव में गोपीजन उनका विस्तार से श्रीमद् भागवतम में बताती हैं। भगवान के गुणों में वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के गुण ऐसे ही हैं कि वो किसी को भी फंसा लेते हैं अपने जाल में और अपनी दासी बनाकर छोड़ देते हैं। गोपीजन कहती हैं कि हमारा मन घर के काम धंधे में लग रहा था जब रासलीला के समय में जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को वृंदावन में बुलाया और जब वे आ गईं तो फिर वापस आते ही उनको लौट जाने को कहा, बोला अब तुम चले जाओ यहाँ से, वृंदावन की शोभा देख ली तुमने, अब जल्दी जल्दी अपने घर में जाओ, तुम्हारे कितने सारे कर्तव्य हैं, तुम्हारे पति हैं बच्चे हैं तो तुम्हें अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। यहाँ पर इतनी आधी रात को आए हो तो इससे तो कितना तुम लोगों ने गलत कार्य किया है, तुम चले जाओ। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखे न भवतात्, कृष्ण हमारा चित्त पहले घर के कामकाज में लगता था, हम अपनी सारी कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करते थे, लेकिन फिर तुमने हमारे उस चित्त को अपनी ओर खींचा क्यों? आपने बांसुरी बजाकर ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करके हमारे साथ ऐसे ऐसे बोल मीठे मीठे हमारे साथ बोले, आंखों के इशारे से हमारे इस मन को तुमने अपनी ओर इतना आकर्षित कर दिया है कि अब हमारी दशा तो आपने ऐसे कर दी है जैसे किसी पंछी के दोनों परों को तोड़ कर कह दो कि अब उड़ो, हमारे हाथ पैर तो तुमने तोड़ दिए, हमारा मन खींच लिया, अब हम ब्रज में जा नहीं सकते क्योंकि जाएंगे तो बिना मन के हम करेंगे क्या? इस तरह उलाना देती है गोपियां। तो कृष्ण कहते हैं हमने क्या किया, हमने क्या तुम्हारे चित्त को खींचा, क्या क्या किया मैंने बताओ। तो भगवान कहते हैं हम मैंने तो कुछ नहीं किया। गोपियां कहती हैं आपका आकर्षण ही ऐसा है, आपकी बांसुरी में वो स्वर है कि हम कहीं भी होती हैं तो हमारा मन खींचा चला आता है आपकी ओर। और कभी कभी तो गोपियां कहती हैं कृष्ण ये आपका दोष नहीं है, ये तो आपके सौंदर्य का दोष है, ये आपकी सुंदरता ऐसी है कि हम ना चाहते हुए भी आपकी ओर देखने को विवश हो जाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं अब मैं क्या करूं, अब भगवान सुंदर हैं तो इसमें भगवान का क्या दोष है। कोई उनके सौंदर्य पर मरता है या पीछे लगा रहता है तो उसमें अब वे क्या करें, कुरूप बन जाएं। इतना आकर्षण है कृष्ण के अंदर कि आत्माराम मुनि भी उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। लता पता पशु पक्षी जो भी संपर्क में आता है वो कृष्ण के प्रेम में उसका मन जो है वो उसके वश से निकल जाता है और कृष्ण के सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता है। वृंदावन में जब कृष्ण चलते हैं और गाय जो घास चर रही होती है वो चरना छोड़ देती है, बच्चे दूध पी रहे होते हैं अपनी गाऊ का, तो जो छोटे बच्चे होते हैं गाऊ के, लेकिन वो दूध पीना छोड़ देते हैं। कितनी आसक्ति होती है गाय को चारा चरने में, बच्चों को दूध पीने में, लेकिन जैसे ही कृष्ण सामने आते हैं वो सब भूल जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। उनको कुछ मतलब चेतन होते हुए भी वो जड़ की बातें कार्य करते हैं, बिल्कुल ठहर जाते हैं, सत्ते में आ जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं कृष्ण को देखकर। ऐसी कृष्ण की सुंदरता, केवल सुंदरता को देखकर मोहित होना तो बहुत बड़ी बात है, केवल श्रवण करने से ही भगवान के विषय में, केवल श्रवण यदि अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव से करते हैं या फिर हृदय से हमारी इच्छा होती है श्रवण करने की, तो रुक्मणी जी ने जिन्हें केवल श्रवण किया था कृष्ण के गुणों का, कभी देखा भी नहीं था, और विवाह होने वाला था उनका, तब उन्होंने कृष्ण को एक पत्र लिखा कि हे द्वारिकाधीश, आपके विषय में श्रवण करके मेरा मन विवश हो गया है, मैं निर्लज हो गई हूँ, अब मुझे किसी और से विवाह नहीं करना है क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा मन किसी और की ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। आप आ जाइए मुझे लेने के लिए, अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा लेटर लिखना कितनी बड़ी बात है, और वो भी कब, जब सेना खड़ी, दूसरा दूल्हा बन के आ गया था शिशुपाल, लेकिन उस समय वो बताती हैं कि देखो आप आ जाना और मैं तुम्हें बताती हूँ मुझे कैसे अपहरण करना, मैं यहाँ पर जाऊँ की देवी पूजा के लिए और आप उस समय मेरा हरण कर देना। तब ये केवल श्रवण का असर, कृष्ण के केवल उनके विषय में यदि श्रवण भी कर लिया जाए तो कृष्ण के अतिरिक्त और ना कोई और अच्छा लगता है, ना किसी और के विषय में श्रवण करना अच्छा लगता है, ना और किसी के विषय में सोचना अच्छा लगता है। तो जब भगवान के गुण इतने विलक्षण हैं, तो जो भी व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन करेगा, तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि उससे बढ़कर मेरा और ना ही कोई प्रिय है और ना ही कभी कोई हो सकता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसकी आवश्यकता है कि मेरे गुणों के विषय में, मेरे शब्दों के विषय में प्रचार हो, लोगों को पता, क्योंकि लोगों को कृष्ण के गुणों के विषय में बताया ही नहीं जाता, कृष्ण के विषय में जानते ही नहीं है, कृष्ण के विषय में प्रचार ही नहीं होगा तो लोगों का मन जो है वो भौतिक वस्तुओं से हटकर कृष्ण की ओर कैसे आकर्षित होगा। भगवान जानते हैं कि जीव का मन जब तक कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हुआ तब तक तो उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए भगवान हम सबके कल्याण के लिए कहते हैं कि मेरे इन शब्दों का, मेरे सौंदर्य का, मेरे गुणों का बखान करो, मेरे विषय में बताओ सबको ताकि सब लोग आकर्षित हो मेरी ओर। और अब आप सबके लिए बहुत गुड न्यूज है, बहुत खुशखबरी है कि इस अध्याय में खूब अच्छी तरह से भगवान के गुणों का वर्णन होगा। सबसे पहले तो सुत गोस्वामी, वो तो थकते नहीं है, वो तो कहेंगे हमारे साथ ही चलेंगे हर एक शब्द के साथ, क्योंकि वो जो भी गुण जो भी कर रहे हैं बखान, आखिर तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ही हमें श्रवण करने को मिल रहा है, सुत गोस्वामी के द्वारा, तो सुत गोस्वामी तो बखान कर ही रहे हैं। और इस अध्याय में, सातवें अध्याय में, सबसे पहले जो भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे वो है अर्जुन, भगवान के प्रिय मित्र, भगवान के सखा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर, तब 5 श्लोकों में अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, क्या विलक्षण शब्द यूज करते हैं। उसके बाद उन्हीं अर्जुन की माता कुंती बहुत ही अनुभवी महिला है, वो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत दुख देखे, मतलब छोटी आयु में वे विधवा हो गई। कृष्ण ने मगर अपनी अहितु की कृपा उन पर सदैव बनाया, क्योंकि वो भगवान की बहुत ही प्रिय भक्ता थी। वो वसुदेव की, यानी कि कृष्ण की बुआ थी, वसुदेव की बहन थी, कृष्ण का संबंध था। और वो स्वयं अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं कि अपनी माता से बढ़कर आपने सदैव मुझे प्रेम किया है। तो कृष्ण के विषय में वे पहले अर्जुन अपना मत देंगी, फिर वे अपना मत देंगी, और बहुत बहुत सुंदर प्रार्थनाएं आएंगी यहाँ पर कुंती महारानी के द्वारा। वे कृष्ण के तत्व को खूब भलीभांति जानते, बुआ है वो कृष्ण की। जब दामोदर लीला के समय, क्योंकि जब दामोदर लीला हो रही थी वृंदावन में, तब कुंती महारानी नंद यशोदा मैया से मिलने के लिए वहां पर गई थी और कृष्ण को भी देखने गई थी। तो उन्होंने देखा कि यशोदा मैया कृष्ण को रस्सी से बांध रही है और कृष्ण की ये मधुर लीला देखकर वो इतना हैरान, वो अपनी स्तुति में बताती है उन्होंने साक्षात इस लीला का दर्शन किया। और वो कहती है कि आप वही कृष्ण हैं, कि आपके केवल सानिध्य मात्र से मेरे बेटों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता, और आप वही कृष्ण हैं जो यशोदा की एक छोटी सी रस्सी से डर रहे थे। मैं जानती हूँ कि उस समय आपका जो डर था वो वास्तविक था, वो कोई नाटक नहीं था, वास्तव में आपको भय लग रहा था, क्योंकि आप केवल अपने भक्तों के प्रेम में बनते हो, क्यों प्रेम जो होता है भक्तों का वो आपको अपनी ओर आकर, भले ही आप सर्व आकर्षण हो, आकर्षण करने वाले हो हर किसी को, लेकिन भक्तों का प्रेम आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बहुत बहुत सुंदर प्रार्थनाएं आएंगी कुंती महारानी की, और उसके बाद भगवान के गुणों को खूब अच्छी तरह से वर्णन करेंगे द्वादश भागवतों में से, जो द्वादश हमारे महाजन हैं उनमें से एक पितामह भीष्म। और जो पितामह भीष्म जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, उस समय सारे ऋषि मुनि परशुराम नारद स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी अपने पिता वेदव्यास जी के साथ उस सभा में होंगे और कृष्ण के गुणों का खूब बखान करेंगे। सारे ऋषि मुनि उस समय श्रवण करने के लिए आएंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पर भगवान के गुणों की का वर्णन करेंगे हस्तिनापुर की नारियां, जो हस्तिनापुर की नारियां जब भगवान मथुरा में हस्तिनापुर में आते हैं तो ऊपर झरोखों में खड़े होकर भगवान के दर्शन करती, और एक सखी दूसरी सखी को कहती है, उंगली से इशारा करके दिखाती है, सखी जानती हो वो पुरुष कौन है, वो जो इतने सुंदर महान व्यक्ति आ रहे जानती हो वो कौन है, वो साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान इतने सुंदर है। और वो कहती है कि उन स्त्रियों ने वास्तव में अपने जीवन में बहुत बहुत जप तपस्या दान बहुत बहुत भक्ति बहुत बहुत इतना अपने जीवन में तपस्या की होगी जिसका पाणी ग्रहण इस भगवान ने किया होगा। कितना सुंदर है, कितना मनोहर है, केवल उसको देखने से ऐसा लगता है कि अपने नेत्रों को झपकाए नहीं। और वो कितनी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं जो कि इनकी पत्नी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत बहुत जिसका सौभाग्य है, वो कौन है? भगवान की पत्नियां। क्योंकि जीव का एकमात्र कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। और पत्नियों को पूरा पूरा अवसर प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने का, वो भगवान के लिए मतलब हर कार्य करते हैं तन मन धन से। भगवान के बाल संवारती हैं, भगवान को वस्त्र आभूषण पहनाती हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाती हैं, भगवान को जूते पहनाती हैं, भगवान की शरण दबाती हैं, भगवान के लिए शैया बनाती हैं, भगवान के लिए हर कार्य, मतलब बार बार उनको भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। भगवान के उठने का समय हुआ है तो भगवान को ये चीज़ें चाहिए होंगी तो वो निकाल के रखती होंगी। अब भगवान के ये समय खाने का है तो ये चीज़ भगवान को बहुत अच्छी लगती है उनके लिए बनाती हैं, और भगवान को है ना अभी ये वाले वस्त्र बना के उनको पहनाती। डायरेक्ट से भगवान की डायरेक्ट सेवा, मतलब ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है किसी स्त्री का कि भगवान